समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
हरी हरी वसुंधरा पे नील नील ये गगन के जिसके बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन, दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
जी हाँ, ये कौन चित्रकार है। हमारी धरती कितनी खूबसूरत है, प्रकृति ने हमें इस खूबसूरत पर्यावरण दिया है, लेकिन हम इंसानों ने इसका अपनी सुविधा के हिसाब से असंतुलित तरीके से इस्तेमाल किया। तो आइए आज विश्व पर्यावरण दिवस पर ये शपथ लें कि हम अपनी वसुंधरा यानी पृथ्वी को हरी भरी खूबसूरत बनाए रखेंगे और प्राकृतिक संसाधनों का सोच समझ कर उपयोग करेंगे।
Well, yes, listeners, World Environment Day is being celebrated across the globe today. Imagine looking at the world around you. Everything you see, feel and experience, the air you breathe, the plants and the animals, the weather, the buildings and even the people you interact with, they all make up your environment. And actually, it is our responsibility to keep our surroundings clean and green and always remember on this World Environment Day to make the best efforts to do so.
जी हाँ श्रोताओं, और इसी के साथ शुरुआत करते हैं न्यूज मैगजीन आज सवेरे की, जो रोज सुबह ताजा तरीन खबरों के साथ देता है आपको वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आज सवेरे के इस एडिशन के साथ मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट शगुन चोपड़ा। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार, और शगुन आपको भी नमस्कार।
Namaskar Siddharth, how beautiful this morning is. Well, yes, listeners, a good morning to you and very welcome to all our listeners. Welcome along. Well, you're tuned into Akashwani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashwani Network. Well, yes, this is our daily news magazine program Aaj Savere with Shagun Chopra and Siddharth today. Well, first, let me give you a little brief about the program. We'll give you the latest in national and international news. Also, we'll be providing you Metro City updates and some historical information related to this day, that is 5th of June. So let's begin with the headlines first. Prime Minister Narendra Modi will lead a special tree plantation drive at Bhagwan Mahavir Vanasthali Park in New Delhi today on the occasion of World Environment Day. The Prime Minister will plant a banyan sapling under the Ek Ped Maa Ke Naam initiative. This will be a part of the Aravali Green Wall project, which aims to reforest the 700 kilometers Aravali range. More from our correspondent.
The project is intended to spread green cover in the 5 kilometers per 4 area around the Aravali Hill Range in 29 districts of 4 states including Delhi, Rajasthan, Haryana and Gujarat. It aims to boost biodiversity of the Aravalis with afforestation, reforestation and restoration of water bodies. It also aims to improve the soil fertility, water availability and climate resilience of the region. The project will benefit the local communities by providing them with employment and income generation opportunities. With Raisuddin Pallavi Parmar, Akashwani News, Delhi.
The Prime Minister will also flag off 200 electric buses under Delhi Government's Sustainable Transport Initiative, promoting clean urban mobility and symbolizing the nation's collective responsibility towards ecological balance.
बिल्कुल शगुन, तो 200 बसेस नई आ रही हैं, तो ये पर्यावरण फ्रेंडली भी हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हैं। इसी के साथ अच्छी खबर ये भी है कि भारत के दो और ऐतिहासिक स्थलों को रामसर धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की संख्या अब 91 हो गई है। राजस्थान के फलौदी में खीचन और उदयपुर में मीनार आदि भूमि को रामसर स्थलों की प्रतिष्ठित सूची में जोड़ा गया है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि ये इस तथ्य का एक और प्रमाण है कि पर्यावरण संरक्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान देने से हरित भविष्य के प्रयासों में भारत को सफलता मिल रही है।
इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ECOSOC of the United Nations for the period from 2026-28. The Council is at the heart of UN's mechanism to advance the three dimensions of sustainable development, economic, social and environmental. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has thanked member states for their overwhelming support and reposing their trust in India. In a social media post, he said, India remains committed on championing development issues and keep working to strengthen the ECOSOC. The ECOSOC is considered a key organ that plays an important role in recommending policies related to economic and social issues.
कांग्रेस नेता शशि थरूर के नेतृत्व में सांसदों के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों और सांसदों से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के मजबूत और दृढ़ रुख के बारे में जानकारी दी। अमरीकी सांसदों ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता की भावना से आतंकवाद का जवाब देने के भारत के अधिकार का समर्थन किया। ये बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल अमरीकी सांसदों, अमरीकी थिंक टैंक और मीडिया पेशेवरों के साथ बातचीत करेगा।
The Ministry of Civil Aviation has directed Turkish Airlines to ensure full compliance with Convention on International Civil Aviation Standards and Recommended Practices, as well as Directorate General of Civil Aviation Regulations. The direction came following the inspections conducted by DGCA, in which it found lack of proper authorization in martial air competency, aircraft maintenance, dangerous goods handling and ground handling agreement. The inspections were conducted at Delhi, Hyderabad, Chennai and Bengaluru from 29th May to 2nd of this month. The inspections were carried out to ensure compliance with both international and national safety regulations.
बढ़ते अगली खबर की ओर। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में आज प्रथम तल पर राजा राम और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसे लेकर अयोध्या में क्या तैयारियां चल रही हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता ओम अवस्थी।
अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ छह अन्य मंदिरों में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान आज अभिजीत मुहूर्त में होगा। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने बताया है कि प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान काशी के विद्वान पंडित जय प्रकाश के नेतृत्व में 101 वैदिक आचार्य करवा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि प्राण प्रतिष्ठा सार्वजनिक आयोजन नहीं है, इसलिए इसमें शामिल होने के लिए लोग अयोध्या न आए। हालांकि रामलला के दर्शन करने वाले लोग सामान्य रूप से दर्शन कर सकते।
Millions of people from across the world, including India, perform Hajj in Saudi Arabia today. Marking the beginning of five-day Hajj rituals, pilgrims converged at 10th city of Mina yesterday. After offering pre-dawn prayers, they will proceed to plains of Arafat today for the main ritual of Hajj, reciting prayers. They will spend the day there praying and asking for God's forgiveness. The pilgrims will listen the Khutbah-e-Hajj or Hajj sermon at Nimra Mosque and offer midday and afternoon prayers together before leaving for Muzdalifah in the evening. The pilgrims will return to Mina tomorrow morning for ritual of animal sacrifice and symbolic stoning of devil.
बढ़ते अगली खबर की ओर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि तत्काल टिकट बुक करने के लिए शीघ्र ही ई आधार वेरिफिकेशन का उपयोग करना शुरू किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे वास्तविक उपयोगकर्ताओं को जरूरत के समय कंफर्म टिकट लेने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि जो IRCTC खाते आधार से लिंक होंगे उन्हें तत्काल टिकट बुकिंग में शुरुआती 10 मिनट में प्राथमिकता यानी प्रेफरेंस दी जाएगी। इस सुविधा से जरूरतमंद लोगों को तत्काल रिजर्व टिकट लेने में बहुत मदद मिलेगी। और शकुन ये अच्छी शुरुआत है।
yes,
तो जिन लोगों का अभी फिलहाल IRCTC खाते का जो उनका आधार से लिंक नहीं हुआ है, अगर वो करा लेते हैं तो वो प्रायोरिटी पैसेंजर्स की लिस्ट में आ जाएंगे।
वेल ऑफ कोर्स यस। नाउ मूविंग ऑन, India has undergone a decade of remarkable transformation driven by the principles of Seva, Sushasan and Garib Kalyan. Akashvani News brings you a special feature on the government's efforts over the last 11 years across key sectors. Today, we focus on education and sports, the key to empowering India's Amrit Piri, the young generation.
In a country where almost two-thirds of its population is under the age of 35, it is the youth that will shape India's destiny. And today, the government is laying the foundation for the future dreams through education and sports. In the field of education, the government has laid out an ambitious roadmap to ensure holistic and inclusive learning from the foundational level through higher education. Under the National Education Policy, NEP 2020, the government aims to achieve 100% enrollment from preschool to secondary level by 2030 and 50% in higher education by 2035. Since 2014, the number of higher education institutions has jumped from 51,000 to over 70,000 with major expansions in IITs, IIMs and AIIMS. The PM Shri Yojana is upgrading 14,500 schools, focusing quality education, holistic development and 21st century skills, while also serving as a mentor institutions for neighboring schools. Alongside education, sports have emerged as a national priority. Under the Khelo India movement, over 1,000 training centers have been opened and 3,000 young athletes receive annual support of 6.28 lakh rupees. The Target Olympic Podium Scheme, TOPS, supports India's top athletes with training, equipment and international exposure. These efforts are paying off. India won 13 medals in the last two Olympics and a record-breaking 29 medals at the Paris Paralympics. India isn't just teaching its youth to read and write. It is teaching them to dream big, run fast and never stop. Vishnu PS, Akashwani News, Delhi.
Vikasit Bharat ka Amritkaal. Seva, Sushasan, Gareeb Kalyan ke 11 saal.
Well, Siddharth, our next story, it focuses on yoga. Well, more than 30,000 organizations across India have registered to participate in Yoga Sangam 2025, the main event of this year's International Day of Yoga. Organized by the Ministry of Ayush, this year's Yoga Sangam reflects a growing movement that transcends traditional yoga practice, positioning it as a nationwide initiative to promote mindfulness, to promote resilience and harmony. We have more on this from our correspondent.
From educational institutions, resident welfare associations to NGOs, corporate bodies and government organizations, entities from across the country have enthusiastically registered their intent to host events on June 21st, the day observed globally as the International Day of Yoga. This year's theme, Yoga for One Earth, One Health, continues to inspire a unified and inclusive movement, bridging geographies and cultures. The 11th edition of International Day of Yoga will witness yoga sessions in diverse settings, from serene peaks of Ladakh to vibrant beaches of Kerala, from school grounds to corporate campuses, and the historic temple courtyards to bustling railway stations, turning over 1 lakh locations into sanctuaries of wellness and unity. A key feature of International Day of Yoga 2025 is integration of technology for tracking participation. Jigyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
और अब बात करते हैं खेल खबरों की, और इसमें हम जानेंगे फ्रेंच ओपन टेनिस के बारे में, जहां पे पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल मैच तय हो गए हैं। छठी वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच ने कल क्वार्टर फाइनल में तीसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी जैनिक सिनर ने कजाकिस्तान के गैर वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर बुब्लिक को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। दूसरी वरीयता प्राप्त कार्लोस अल्कराज और आठवीं वरीयता प्राप्त इटली के खिलाड़ी लोरेंजो मुसेट्टी ने भी अंतिम चार में जगह पक्की कर ली है। उधर महिला सिंगल्स में भी सेमीफाइनल मैच तय हो गए हैं। विश्व के दूसरे नंबर की खिलाड़ी कोको गॉफ और गैर वरीयता प्राप्त लुईस पोइसन ने कल पेरिस में अंतिम चार में जगह पक्की की। अमेरिकी खिलाड़ी गॉफ ने क्वार्टर फाइनल में सातवीं वरीयता प्राप्त और अपने ही देश की मैडिसन कीस को हराया। फ्रांस की नोर्स बोटसन ने छठी वरीयता प्राप्त रूसी खिलाड़ी मीरा एंड्रीवा को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। शीर्ष वरीयता प्राप्त आरना सबालिंका और पांचवीं वरीयता प्राप्त इगा स्वीटिक ने भी सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और श्रोताओं, कार्यक्रम आज सवेरे में वक्त हो चला है मेट्रो न्यूज का, और सबसे पहले चेन्नई के समाचारों के साथ हैं शगुन।
यस सिद्धार्थ, बिगिनिंग विद चेन्नई हियर। The researchers at IIT Madras, they have developed a desalination system that uses sunlight and seawater to produce 10,000 liters of potable water a day. A compact version, which soon be patented, was developed on the IIT Madras campus after a pilot plant was set up at Kanyakumari in collaboration with National Institute of Ocean Technology and with the support of the Ministry of Earth Sciences. The plant uses multi-effect desalination technology, where seawater is heated in stages using flat plate solar collectors reaching about 75 degrees Celsius and transforms into steam under vacuum. The steam passes through four evaporation chambers, condensing into fresh water at each stage. An ejector maintains a vacuum of 100 millibar by removing air, allowing boiling at lower temperatures. Professor Advait Shankar, Department of Mechanical Engineering, IIT, said that the technology can be economical, including operational and maintenance costs when scaled up. So good news coming from Chennai first. I have one more update, Siddharth, from Chennai. Greater Chennai Corporation is planning to appoint at least 10 more counsellors this academic year across all its schools for students taking public exams. Vijay Arani, Joint Commissioner, has said that with this, at least 25 to 30 counsellors will be available sourced externally to offer guidance to students on the range of subjects, including career guidance.
जी हाँ, और अब रुक करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के समाचारों का. और शगुन इस समय समर वेकेशन शुरू हो चुकी है बच्चों की, और इसे लेकर बहुत सारे लोग प्लानिंग करते हैं कि कहाँ जाना है. तो अगर आप ये प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी NSD कल से 13 जुलाई तक नई दिल्ली में ग्रीष्मकालीन नाट्य समारोह का आयोजन कर रहा है. एक महीने से अधिक तक चलने वाले इस समारोह में 45 से अधिक नाटक दिखाए जाएंगे. ज्यादा जानकारी के लिए सुनते हैं हमारे संवाददाता सकलेन अख्तर की ये रिपोर्ट.
इस बार समारोह में अजय शुक्ला कृत ताजमहल का टेंडर, मोहन राकेश कृत आधे अधूरे, धर्मवीर भारती की अंधा युग, अभिज्ञान शाकुंतलम, लैला मजनू, बाबूजी और समुद्र मंथन जैसे नाटक शामिल हैं. आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत करते हुए NSD के निदेशक चित्रंजन त्रिपाठी ने कहा कि NSD 15-16 साल की अवधि के बाद इस ग्रीष्मकालीन समारोह का आयोजन कर रहा है.
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का रंगमंडल एक 30 से 40 दिन का ग्रीष्मकालीन समारोह लोगों के सामने लेके आ रहा है, जो 12-15 साल से सिकुड़ गया था. पहले ये ऐसे ही होता था, अभी सब लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के प्रयास सबकी जारी है और रंग प्रेमियों के सामने लेके आ रहे हैं. इसमें हर जॉनर का प्ले आपको देखने को मिलेगा.
38 दिनों तक चलने वाले इस समारोह में प्रतिदिन 2 बार मंचन होगा, जिसमें पहला मंचन दोपहर 3:30 बजे और दूसरा शाम 7 बजे होगा.
जी हाँ, तो अगले 45 दिन आप इस जो नाट्य महोत्सव है इसका आनंद ले सकते हैं. बढ़ते अगली खबर की ओर. DDA यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वॉक इन पब्लिक हियरिंग की सुविधा फिर से शुरू की है, जिसमें लोग बिना किसी पूर्व ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के वरिष्ठ अधिकारियों से मिल सकेंगे. तो DDA के अनुसार लोग अब बिना किसी अपॉइंटमेंट के हर सोमवार और बृहस्पतिवार को दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक DDA के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं. और अब बेंगलुरु मेट्रो की खबर के साथ हैं शगुन.
यस, दिस अपडेट फ्रॉम बेंगलुरु. कर्नाटका गवर्नर थावरचंद गहलोत हैज एक्सप्रेस डीप ग्रीफ ओवर द ट्रैजिक स्टैम्पीड दैट अकर्ड आउटसाइड M. चिन्नास्वामी स्टेडियम इन बेंगलुरु. The stampede occurred when lakhs of RCB fans thronged the stadium where the victory celebration was planned after winning the IPL championship. In his message on social media, he expressed heartfelt condolences to the bereaved families and prayed for the swift recovery of the injured. The governor has also expressed concern over the lapses that may have led to the stampede. He has urged the government to thoroughly investigate the lapses that led to the tragic incident outside the stadium and extend financial support for the families of the deceased. He also added that such incidents must not be repeated. He has called for accountability and appropriate remedial action to prevent such tragic incidents in the future.
और शगुन, अब रुक करते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के समाचारों का. रेल मंत्रालय ने महाराष्ट्र में मध्य रेलवे के अंतर्गत मिराज कार्ड लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 129 करोड़ रुपए है. मिराज जंक्शन प्रमुख मार्गों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण रेल इंटरचेंज प्वाइंट है. महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण वन महोत्सव सप्ताह मनाने के लिए 1 से 7 जुलाई तक पूरे राज्य में करीब 2 लाख पेड़ लगाएगा. इनमें से 50,000 पेड़ मुंबई महानगर क्षेत्र में लगाए जाएंगे और सभी पेड़ों को जियो टैग किया जाएगा. और अब नजर हैदराबाद मेट्रो के समाचारों पर.
यस सिद्धार्थ, सो फ्रॉम हैदराबाद, द तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड एग बिरयानी इन द वीकली मील प्लान्स टू एनहांस चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड अट्रैक्ट मोर चिल्ड्रन टू आंगनवाड़ी सेंटर्स इन द स्टेट. State Women and Child Welfare Minister Anusuya Sitaka announced that egg biryani will be served once or twice a week in Anganwadi centres to make meals both nutritious and enjoyable. She was addressing the Medho Madina Sadasu 2025 held in Hyderabad yesterday. She said the step is part of a larger strategy to tackle malnutrition and ensure holistic development of children through a play school-like environment.
और अब रुख करते हैं देश की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता के समाचारों का. विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल में पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं. कोलकाता में कोलकाता जलवायु कार्य योजना KCAP को दोपहर में टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में लॉन्च किया जाएगा. तो ये थे अब तक के मेट्रो समाचार. श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे आकाशवाणी गोल्ड पर सिद्धार्थ और शगुन के साथ. इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 7:50 और पूरे 22 सेकंड हो चुके हैं. अब जानते हैं आज महानगरों में मौसम कैसा रहने वाला है और सबसे पहले बात दिल्ली मुंबई और कोलकाता के मौसम की. राष्ट्रीय राजधानी में आज मौसम की बात करें तो यहां आंधी के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है. साथ ही कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है. दिल्ली का अधिकतम तापमान 35 जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मुंबई का रुख करें तो वहां भी आज बादल छाए रहेंगे और बारिश का अनुमान है. न्यूनतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया गया जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. कोलकाता की बात करें तो यहां आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे साथ ही बारिश की भी संभावना है. तो तीनों ही मेट्रोज में बारिश होने वाली है. न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. और अब चेन्नई हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं शकुन से.
यस, फोकसिंग ऑन चेन्नई फर्स्ट सिद्धार्थ, इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई इन चेन्नई. द मिनिमम टेम्परेचर वाज 28 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम इट विल बी अराउंड 39 डिग्रीज. नाउ टॉकिंग अबाउट बेंगलुरु, इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and maximum will be around 31 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky and there is a possibility of development of thunder lightning. The temperature will hover between a minimum of 26 degrees and a maximum of 36 degrees Celsius.
और श्रोताओं अब समय है इतिहास के पन्नों में दर्ज उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन का इतिहास बन गई. लेकिन सबसे पहले बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस की. प्रकृति और पृथ्वी के संरक्षण के लिए दुनिया भर में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है. और विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक उत्सव का जो नेतृत्व है वो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम यानी UNEP द्वारा किया जाता है. 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ये दिन पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी.
Well, yes, all of us, the inhabitants of the planet Earth, we are required to do all that is possible in our power to keep our environment clean and also safe for us and Siddharth also for our future generations. And there are umpteen ways, you know, to spread the word, among which I think on this particular event, this particular day, writing slogans and showcasing them on social and public platforms, this has been proven very effective, right?
बिल्कुल. तो जगह-जगह इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. और आपको ये भी बता दें कि इस साल विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम है वो है प्लास्टिक प्रदूषण को हराना. क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो हमारे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है. तो सिंगल यूज जो प्लास्टिक है इसके यूज से इसको हमें कम से कम उपयोग करना पड़ेगा.
Yes,
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा है कि एक पेड़ हम माँ के नाम लगाएं.
विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है. इस अभियान का नाम है एक पेड़ माँ के नाम. मैंने भी एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाया है. मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी माँ के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं.
Well, yes, Ek Ped Ma Ke Naam, this initiative, and also, as you've been mentioning, this year the focus will be on plastic pollution. Well, this is one of the most serious threats to our environment, and this year's theme, it also rightly highlights the devastating impact of plastic waste on ecosystems, and also to unite collective efforts towards sustainable solutions, Siddharth.
और शगुन, अभी इस समय जैसे कि छुट्टियां चल रही हैं, लोग जगह जगह हिल स्टेशंस पर जाते हैं, तो वहां पर आप देखते हैं तो प्लास्टिक का अंबार लगा रहता है. तो हमारी आप सबसे अपील है कि आप इसका कम से कम उपयोग करें. अगर उसको, उस वेस्ट को आप अच्छी तरीके से उसका निस्तारण करें, और अगर कचरा प्रबंधन में 3R का इस्तेमाल करें, यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल को बढ़ावा दें.
डेफिनेटली. Also, we'll go back in time. First, let's talk about the year 1980 now. Manipur University was established. Now in the year 1989, missile Trishul was tested successfully.
और श्रोताओं, याद करते हैं उन महान हस्तियों को जो आज के दिन हमसे मिले या जुदा हुए. आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा देश की आजादी से पहले की एक प्रतिभाशाली गजल और गीत गायक मास्टर मदन ने. मास्टर मदन एक ऐसे कलाकार थे जो 1930 के दशक में किशोर के रूप में ख्याति प्राप्त करके मात्र 15 साल की उम्र में 1940 के दशक में ही इस दुनिया को छोड़ गए थे. मास्टर मदन उस समय के प्रसिद्ध गायक कुंदनलाल सहगल के बहुत करीब थे, जिसके कारण दोनों का ही जालंधर का निवासी होना था. मास्टर मदन का जन्म 28 दिसंबर 1927 को पंजाब के जालंधर जिले में हुआ था. उनके लगभग 8 गीत रिकॉर्ड हुए थे, जिनमें जैसे कि आप बैकग्राउंड में सुन रहे हैं, यू ना रह रहे कर में तरसाइए और हैरस से तक रहा है, ये भी काफी प्रसिद्ध हुआ. Well, listeners, today we're also remembering John Maynard Keynes, economist and philosopher whose ideas fundamentally changed the theory and practice of macroeconomics and the economic policies of governments. Today, it's his birth anniversary. Well, he was originally trained in mathematics and he built on and greatly refined earlier work on the causes of business cycles. So the people who are interested in economics, this is specially for you. I've picked specifically for you. His ideas reformulated as new Keynesianism and are fundamental to mainstream macroeconomics. He's known as the father of macroeconomics as well. And today we are also remembering Stephen Crane, poet, novelist and short story writer. Prolific throughout his short life, he wrote notable works in the realist tradition as well as early examples of naturalism and impressionism. और श्रोताओं, आज ही जन्मदिन है देश के सुप्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी कोच रमेश कृष्णन का. 1970 के दशक के अंत में जूनियर खिलाड़ी के रूप में इन्होंने विंबलडन और फ्रेंच ओपन में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता था. 1980 के दशक में 3 ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तक पहुंचे और डेविस कप टीम में भी फाइनल तक पहुंचे थे.
Now, Siddharth, let me talk about another musician now. We started with the musician. Now, I'm also talking about Melvin Howard Thorme. Musician, singer, composer, and also an arranger. He also played drums. He composed the music for the Christmas song and also co-wrote lyrics with Bob Wills. He's another artist. And he won 2 Grammy Awards. And I have specifically picked one song, which is about, because today it's World Environment Day. So this song is Mountain Greenery.
While you love your lover, let blue skies be your cover. Let when it rains, we'll laugh at the weather. And if you're good, I'll search for wood so you can cook. While I stand looking, beans could get no keener reception. In a beanery, bless our mountain greenery home. Simple cooking means.
और श्रोताओं, धीरे धीरे घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि आपसे विदा ली जाए.
हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन.
जहाँ इसी गीत से हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अपने पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखने का वादा करें। अगर आप रेड लाइट पर हैं, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो अपनी गाड़ी का इंजन ऑफ करें, इधर उधर कचरा ना फेंकें, और जब भी किसी टूरिस्ट प्लेस पर जाएं वहां प्लास्टिक का कचरा ना फेंकें। ये धरती हमारी है और इसे स्वच्छ रखना हमारी ही जिम्मेदारी है।
Well, yes. Raising global awareness about this and inspiring action to protect our environment is definitely needed, and also including the protecting of marine life and conserving biodiversity, listeners, also along with promoting sustainable production and consumption.
श्रोताओं, आपके बेहतर दिन की शुभकामनाओं के साथ इसी के साथ अनुमति दीजिए सिद्धार्थ सिंह और शगुन चोपड़ा को कार्यक्रम आज सवेरे यही समाप्त करने की, लेकिन आप बने रहिए आकाशवाणी के साथ। नमस्कार,
नमस्कार।